सुबह के 6:30 बज रहे थे। आर्य एली के घर पर कंफर्टेबली सेटल हो गया था। वो उसके बेडरूम में सो रहा था। सुबह ठीक 6:30 बजे अलार्म बजने पर उसकी नींद खुली। उसने उठकर अलार्म बंद किया और पास में रखा पानी पिया ताकि उसकी नींद अच्छे से खुल जाए। पानी पीते हुए उसे अपने घर में खाने पकाने की खुशबू महसूस हुई। मैंने पीटर अंकल से कहा था कि मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बना लूंगा, फिर इतनी सुबह घर पर कौन खाना पका रहा है। आर्य जल्दी से बिस्तर से उठा और देखने के लिए बाहर आया। किचन में उसके दादाजी विक्रम प्रताप सिंह थे, जो उसके लिए ऑमलेट बना रहे थे। आर्य को सामने देखकर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग, तुम तो बहुत पंक्चुअल हो, आज भी टाइम पर उठते हो। आर्य उनके पास गया और कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इतने सुबह मेरे घर पर क्या कर रहे हो और आप मेरे लिए ब्रेकफास्ट क्यों बना रहे हो? आपने तो मेरे साथ सेटल होने से मना कर दिया था। वैसे आपको कैसे पता चला कि मैं इसी घर में हूँ? आर्य ने उनके सामने सवालों की झड़ी लगा दी। क्योंकि मैं तुम्हारा दादा हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में हर छोटी चीज़ पता है। मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं मिलोगे, तो बस आ गया मिलने, विक्रम जी ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर आर्य ने मुंह बनाया। अब आने का क्या फ़ायदा? कल जब मैं सबके सामने आपसे पूछ रहा था कि आप मेरे साथ चलिए, तब आपने कोई जवाब नहीं दिया। सब मेरी तरफ अजीब नज़रों से देख रहे थे। एटलीस्ट मेरी इज्जत रखने के लिए तो हाँ बोल देते। अच्छा बताओ, ऑमलेट के साथ क्या खाओगे? जूस बना दूँ? विक्रम सिंह जी ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसे नाश्ते के बारे में पूछने लगे। उनका पूरा ध्यान कुकिंग पर था। आर्य उनके पास गया और उनका हाथ पकड़कर कहा, दादू, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूँगा। और आप तो मुझसे बात भी मत कीजिए, मैं आपसे नाराज़ हूँ। तू कोई मेरी गर्लफ्रेंड है जो मुझसे नाराज़ है और मैं तुझे मनाऊँ? विक्रम जी ने उसका हाथ झटका और फिर से ऑमलेट बनाने लगे। रहने दीजिए, अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड भी होता तब भी कौन सा आप मुझे मनाने आ जाते? आपको बातें टालना अच्छे से आता है, लेकिन इस बार मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। मुझे अच्छे से याद है, कल आपने सबके सामने मेरे साथ आने से मना कर दिया था। आप ये सब मुझे मनाने के लिए कर रहे हैं तो मत कीजिए, मैं नहीं मानने वाला। बस भिकर, तू जानता है कि मैं उस घर को छोड़कर नहीं आ सकता। वैसे भी वो घर चिड़ियाघर से कम नहीं है। मैं भी आ गया तो सारे जानवर बाहर निकल आएंगे और फिर पता है ना क्या होगा? विक्रम जी ने गंभीरता से कहा। हाँ, तो अपने उन जानवरों को अब बांध कर रखिएगा, गलती से भी वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। इस बार के लिए मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ, पर आगे से आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। आर्य किसी मासूम बच्चे की तरह तुरंत मान गया। उसके मानने पर विक्रम सिंह जी भी खुश थे। उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, चल अब जल्दी से फ्रेश होकर आ, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, और हाँ, ज़्यादा टाइम मत लगाना। आर्य ने उनकी बात पर हामी भरी और वहाँ से चला गया। उसके आने तक विक्रम जी ने नाश्ता और जूस बना लिया था। उन्होंने सारे खाने को डाइनिंग टेबल पर सेट किया और आर्य के आने का इंतज़ार करने लगे। उनका इंतज़ार करते हुए उनकी नज़र सामने लगी आर्य और एली की तस्वीर पर गई। उसे देखने के बाद उनका चेहरा उतर गया। वो उठकर तस्वीर के पास गए। एक तुम ही थी जिसके होने पर हम दोनों को कुछ अच्छा होने की उम्मीद थी। तुम्हारे जाने के बाद वो उम्मीद भी मिट गई। तुम थी तो हम दोनों खुलकर जी पाते थे। अब हम दोनों ही अकेले हो गए हैं। जानता हूँ तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। आर्य तो क्या, मैं खुद नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी जगह ले, पर जिंदगी एक जगह पर नहीं रुक सकती ना। इसे तो आगे बढ़ना ही है और आर्य को भी आगे बढ़ना होगा। मैं चाहता हूँ अब वो आगे बढ़े। विक्रम जी एली की तस्वीर के सामने खड़े होकर उससे बातें कर रहे थे। तभी आर्य बाथरूम से बाहर आया और उन्हें एली की तस्वीर के आगे खड़ा देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने उनके पास आकर कहा, अच्छा तो मेरे पीछे से मेरी एली से शिकायत लगाई जा रही है। आपको याद है ना, ये हमेशा मेरा फेवर करती है। यहाँ आपकी दाल नहीं गलने वाली दादू। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, हर बार की तरह इसका साथ मांग रहा हूँ, विक्रम जी ने जवाब दिया। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, आर्य ने उन्हें टालने के लिए कहा और उनका हाथ पकड़कर उन्हें डाइनिंग टेबल तक ले आया। आर्य और विक्रम जी साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जैसे ही आर्य ने फर्स्ट बाइट खाया, उसने कहा, अरे वाह, आज भी आपके हाथों में वही स्वाद है। मैं तो कहता हूँ आप मेरे यहाँ कुक की नौकरी कर लीजिए, फिर आपको मेरे पास आने का बहाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। अब बस भीकर, क्या उम्र भर मुझसे ही खाना बनवाता रहेगा? मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। उन्होंने बातों ही बातों में आर्य से शादी करने की बात कही। सुबह सुबह इस आशीर्वाद के लिए थैंक यू सो मच दादू, मैं अपनी लाइफ में सच में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं ना, मैं वैसे भी काफ़ी आगे बढ़ रहा हूँ। आर्य ने काफ़ी स्मार्टली बातचीत का रुख बदल दिया। हाँ, बातें घुमाना तो कोई तुमसे सीखे, पर अब मैं तुम्हारी और नहीं सुनने वाला। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कल ही मर जाऊँ। मैं चाहता हूँ मरने से पहले मैं बच्चे की किलकारी सुनूँ। ज़रूर, क्यों नहीं। आपको पता है ना, आपके लाडले बेटे घर में अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेकर आए हैं। जिस हिसाब से उनकी हरकतें हैं, आज नहीं तो कल आपको उस घर में बच्चे की किलकारी सुनाई दे ही जाएगी। कहकर आर्या हंसने लगा। उसके ऐसा करने पर विक्रम जी ने उसके कंधे पर हाथ मारा। आहा, लगता है दादू, आर्या ने बच्चों सा मुंह बनाया। हाँ तो उल्टा सीधा बोलोगे तो ऐसे ही पिटाई होगी। मैं घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहता था, क्योंकि मैं अगर घुमा फिरा कर बात तो करूंगा तो तुम उस बात को घुमा फिरा कर कहीं और ही ले जाओगे। बेहतर होगा कि अब सीधे सीधे तुम्हें कह दूं। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ, वरना मैं ही कोई लड़की पसंद कर लेता हूँ, विक्रम जी ने सख्त शब्दों में कहा। उनकी बात सुनकर आर्या ने अपने मुंह पर हाथ रखा और कहा, हव्वा दादू, आप इस उम्र में लड़की पसंद करेंगे? मैंने तो पहले ही कहा था उस घर में मत रहिए, वरना आपके बेटे का आप पर असर हो ही जाएगा। आर्या, विक्रम जी ने उसकी तरफ घूर कर देखा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। आप जानते हो ना कि मैं सिर्फ एली से प्यार करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसकी जगह कोई और ले पाएगा। वो बहुत अलग थी। आजकल की लड़कियाँ तो उसके आसपास भी नहीं है। मुझे कोई पसंद नहीं है और ना ही मुझे किसी को पसंद करना। आज नहीं तो कल तुम्हें शादी करनी होगी। चलो ठीक है, मैं मॉडर्न ख्यालात का हूँ तो तुम्हें लिव इन में रहने की इजाजत दे देता हूँ। अगर कोई लड़की पसंद है तो तुम उसके साथ लिव इन में रह सकते हो। विक्रम जी आर्या के दिल की बात जानने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। अगर मुझे कोई लड़की पसंद होती तो मैं उससे शादी ही कर लेता ना, ये लिविन जैसा ड्रामा करने की क्या जरूरत है। तो कहीं तुम अलग तो नहीं? मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यार प्यार होता है, चाहे वो किसी लड़के से हो या लड़की से। कहीं तुम्हें कोई लड़का तो? विक्रम जी अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले आर्या बीच में ही चिल्ला कर बोला, प्लीज दादू स्टॉप दिस नॉनसेंस, आई एम स्ट्रेट। और हाँ, मुझे एली के अलावा अपनी लाइफ में किसी को जगह नहीं देनी। ठीक है तो मैं समझ गया, मैं तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। बाद में मत कहना कि मैंने जबरदस्ती की। हमारे जमाने में भी यही होता था, हम भी शादी के लिए तैयार नहीं होते थे, फिर भी घर वाले अच्छी लड़की ढूंढकर शादी करवा ही देते थे। मैं भी तुम्हारी दादी के साथ बहुत खुश था। विक्रम जी अपनी जिद पर अड़े थे।
हाँ, मुझे अच्छे से पता है आप कितने खुश थे। आपको रमनदीप दादी पसंद थी, लेकिन हेजिटेशन के मारे आप कुछ कह नहीं पाए और उनकी शादी आपके भाई से हो गई। माना मेरी दादी अच्छी थी, पर आप तो रमनदीप दादी को पसंद करते थे ना?
ये बात तुम उसके सामने मत कह देना, वरना वो मुझे दो बातें अलग से सुनाएगी। वैसे भी उसने मुझे कम टॉन्ट नहीं मारे तेरे बाप की वजह से।
विक्रम जी की बात से आर्या समझ गया था कि उनके मन में ये बात किसने डाली होगी। उसने झट से कहा, अच्छा तो ये सब रमनदीप दादी का किया धरा है। तभी मैं सोचूं अचानक आपको मेरी शादी की फिक्र कब से सताने लगी। बोल दीजिएगा अपनी एक्स लवर को कि मुझे नहीं करनी है शादी। अपनी बात कहकर आर्या कपड़े लेकर नहाने के लिए चला गया। विक्रम जी उसे वहां समझाने आए थे, पर उनका वहां आना कोई काम नहीं आया। वो मॉर्निंग वॉक के बहाने उससे मिलने के लिए यहां आए थे। आर्या के नहाने चले जाने के बाद वो वहां से चले गए। आर्या जब तैयार होकर बाहर आया तो विक्रम सिंह जी वहां से जा चुके थे। उन्हें वहां ना देखकर उसने खुद से कहा, मुझे दादी से बात करनी होगी कि वो मेरे दादू के दिमाग में ये सब उल्टी सीधी चीजें ना डालें। उन्हें शादी का इतना ही शौक है तो खुद कर लेना, मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हैं। पता नहीं लोगों की प्रॉब्लम क्या है, इन्हें एक सिंगल इंसान की खुशी बर्दाश्त नहीं होती जो शादी शादी करके उनके पीछे पड़े रहते हैं। क्या सिंगल लोगों की कोई लाइफ नहीं होती यार? या ऐसा होता है कि शादी करने के बाद सारी प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएगी? विक्रम सिंह जी की बातों को सोचकर आर्या को हल्का गुस्सा आ रहा था। उसने जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत घर मैनेज किया और फिर ऑफिस जाने के लिए निकल गया। वहीं शिवी भी ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी थी। कल उसे जिया ने तैयार किया था इसलिए वो अलग लग रही थी, लेकिन आज वो हमेशा की तरह खुद से तैयार हुई थी। उसने अपने पापा का दिया पिंक स्वेटर पहना था और साथ में वाइट जैकेट भी। आज ज्यादा ठंड नहीं होने की वजह से उसने स्कार्फ नहीं लिया था। उसके लंबे घुंघराले बाल नॉर्मल तरीके से खुले थे। शिवी सबवे स्टेशन से निकलकर ऑफिस तक पैदल चलकर आ रही थी। ठंड ज्यादा न होने के कारण उसने जैकेट कंधे पर टांग रखी थी। वहीं आर्या अपनी गाड़ी में ऑफिस जा रहा था तो उसे शिवी दिखाई दी। उसने तुरंत ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और उसे देखने लगा।
ये तो शिवी है ना, ये यहाँ क्या कर रही है? उस दिन उस होटल के मालिक का ब्रेन वॉश करके मेरी डील कैंसिल करवाने की कोशिश की थी ना, इसे अच्छे से पता है मैंने वो होटल खरीद लिया था, तभी उस रात पार्टी को नहीं आई। मुझे इससे मिलना था और उस बारे में बात करनी थी। इसे भी तो पता चले कि आर्या सिंह ओब्रॉय से ये कभी नहीं जीत पाएगी।
सोचते हुए आर्या गाड़ी से बाहर निकला और शिवी के पीछे जाने लगा। शिवी इस बात से बेखबर अपनी धुन में चल रही थी। आई होप कल की तरह आज का दिन भी अच्छे से बीते और उस आर्या सिंह ओब्रॉय की शक्ल न देखनी पड़े। आज ध्वनि मैम से बात करके उन्हें छुट्टी का बोलती हूँ ताकि एक हफ्ते के लिए इंडिया जा सकूं। प्लीज मुझे छुट्टी मिल जाए भगवान जी। आर्या शिवी के पीछे पीछे था। वो डिजायर्स ही जा रही थी जबकि उसका पीछा करते हुए आर्या भी वहां तक पहुंच चुका था। उसे डिजायर्स के पास देखकर उसे बहुत हैरानी हुई।